ओम शांति। आज हम सब के बीच में आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी हम सभी को स्पार्कल्स जो बाबा के बच्चे विशेष योग का प्रयोग कर रहे हैं, हम सभी पर बाबा के असीम ज्ञान की ऐसी वर्षा करने पहुंचे हैं कि वाकई ही हम डबल लाइट फरिश्ता बनकर ही अपने अपने स्थानों पर जाकर विशेष ये सेवाएं दे पाए। तो आदरणीय दीदी जी का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। दीदी जी, आप अपने बाल्यकाल अवस्था से ही 14 वर्ष की आयु से ही लौकिक माता पिताजी के साथ ज्ञान में आए और 1980 से आप सरेंडर हुए। 1985 में जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ द यूथ के अंतर्गत युवा पद यात्रा मुंबई से दिल्ली की आयोजित की थी, उसमें आपने भाग लिया था और अनेक स्थानों पर, चाहे वो गांव हो, कब्जों हो या अनेक शहरों में, अपने ईश्वरीय ज्ञान का संदेश अनेक आत्माओं को दिया। आप स्वयं सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप इस कोर्स के संचालक रहे और अनेक कंपनियों को जैसे नागार्जुन फर्टिलाइजर, गोदरेज, अमूल, बीएसएनएल, टाटा आयरन एंड स्टील, ऐसी कंपनियों में भी आपने कई अपने लेक्चर्स दिए। अनेक आत्माओं को बाबा का वारिस बनाने के भी आप निमित्त बने, इसलिए आपको बहुत बहुत दिल से हम दीदी थैंक्स कहते भी हैं और ईश्वरीय ज्ञान को और भी आत्माओं तक ले जाने के लिए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, ये भी आप सभी सुन भी रहे होंगे, उनके कई लेक्चर्स हैं, और रामायण इस आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करने के निमित्त भी आप ही हैं। इस अंतर्गत कई मेगा प्रोग्राम्स अनेक स्थानों पर आयोजित किए गए थे, अनेक आत्माओं ने लाखों के अंदाज में एक एक स्थान पर इस ईश्वरीय संदेश का लाभ लिया। तो इस ज्ञान वर्षा को जो बाबा ने आप में भर दिया, अनेक आत्माओं पर इसको वर्षाने के निमित्त आप बने। तो ऐसे ज्ञान को अथॉरिटी से, अधिकार के रूप से, बुलंद आवाज से अनेक आत्माओं के बीच में रखने का एक अनुपम माध्यम कहो बाबा ने आपको बनाया है दीदी जी। तो हम सभी बाबा के योग के प्रयोग करने वाले बच्चों की ओर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत स्वागत करते हैं दीदी। ओम शांति। तो आज हमें डबल लाइट फरिश्ता इस विषय पर विशेष योग प्रयोग सिखाएंगे।
ओम शांति। आज का बहुत सुंदर ये विषय और आप सभी ने प्रयोग भी अपनी रीति से किया होगा, समय प्रति समय बाबा की याद में जब भी बैठते हैं तो नेचुरल है कि आपने फरिश्तापन क्या है उसका अनुभव भी किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो आज सब्जेक्ट रखा है, वास्तव में तो मैं सोच रही थी कि इस पर क्लास होने के बजाय सीधा उसी स्वरूप में स्थित होकर के उस स्थिति में हम सभी बैठ जाए और फरिश्ते रूप में ही अनुभव करें अपने आप को, क्योंकि जब बाबा ने कहा है कि संगम युग का फाइनल पिक्चर या फाइनल डिग्री कहो, यही फरिश्ता स्वरूप है। और हर एक का लक्ष्य, हर एक ब्राह्मण का लक्ष्य उसका अनुभव करना है, क्योंकि जितना इसका अनुभव करते जाएंगे तो नेचुरल है कि उस स्वरूप में स्थित होना या फाइनल उसी अवस्था से सहज देह से अलग हो जाना और बाबा की गोद में चले जाना आसान होगा। तो कुछ क्षण के लिए हम सभी फरिश्ता स्वरूप में अपनी अपनी समझ से जो आप अभ्यास करते हैं उसमें बैठेंगे, उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा क्लेरिफिकेशन दूंगी। कुछ क्षण के लिए इस भौतिक देह से न्यारे हो जाए, मन और बुद्धि को उपराम करते हुए स्वयं को विजुअलाइज करें, मैं आत्मा, अपने अंतर्वाहन से सूक्ष्म वतन जहां मैं अपना चमकीला फरिश्ता ड्रेस धारण करती हूं, और स्वयं को एकदम हल्का लाइट रूप में महसूस करती हूं। मैं फरिश्ता उड़ते हुए अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख स्वयं को देख रही हूं, ना हल्कापन, तो जैसे फरिश्ता माना ही तीन विशेषताओं से संपन्न, अंतर्मुखी, अव्यक्त, अलौकिक, लाइट स्वरूप। अंतर्मुखी जब कहते हैं तो अंतर्मुखता की गुफा में, कई बार हम बच्चों को बाबा बैठने के लिए कहते हैं, अर्थात एकांत और एकाग्रता। जितनी हमारे अंदर एकांत अर्थात एक बाबा के प्यार में, शुद्ध प्यार में समाये हुए, और एकाग्रता अर्थात मन किसी भी और विचलित नहीं होता, तब कहेंगे कि हाँ अंतर्मुखी है। दूसरा कहा अव्यक्त, अर्थात इस व्यक्त भाव और व्यक्त भावनाओं से अपने आप को ऊपर कर देना, उपराम कर देना, न्यारा कर देना। और तीसरा अलौकिक, अलौकिक यानी लौकिक पना जहां ना हो। लौकिक पना हर लेवल में होता है, चाहे दृष्टि, वृत्ति, कृति, इन सब में भी अलौकिकता यानी वो दिव्यता स्पष्ट अनुभव हो। अव्यक्त और अलौकिक में इतना अंतर है जैसे कि कमल का पुष्प और गुलाब का पुष्प। कमल के पुष्प को कहेंगे अलौकिक और गुलाब के पुष्प को कहेंगे अव्यक्त। न्यारे, कमल का फूल न्यारा और प्यारा, गुलाब का फूल उपरा। इन दोनों फूल में अंतर क्या है कि कमल का फूल जब पानी में है, कीचड़ में है, तो कमल के फूल की पूरी गृहस्थी है नीचे, इतनी गृहस्थी उसकी फैली हुई है, लेकिन फिर भी उससे न्यारा, डिटैच्ड, अर्थात उस गृहस्थी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए उसको अलौकिक कहा। और गुलाब का फूल यानी उपराम, उपराम अर्थात जैसे गुलाब का फूल जब पूर्ण रीति से खिल जाता है तो सारी पंखुड़ियां झड़ने लगती है और खाली बूर रह जाता है, अर्थात अव्यक्त, देह और देह के संबंधों से एकदम उपराम हो गए, वो जड़ गए, कोई भी प्रकार की व्यक्त भाव और भावना उससे कनेक्ट नहीं है, सब धीरे 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 संपूर्ण खिल गया ना। जबकि कमल का फूल झड़ता नहीं है, वो अपनी पंखुड़ियों को झड़ा डिटैच नहीं कर देता है, लेकिन हाँ उस गृहस्थी से न्यारा है। ठीक इसी तरह हम सभी ने भी अपने कारोबार की, अपने सेवाओं की, अनेक प्रकार के गृहस्थियों को फैलाया है, लेकिन फिर भी कमल के फूल की तरह न्यारे और प्यारे। लेकिन जैसे जैसे हम उस फाइनल डिग्री की ओर, फरिश्तापन की स्थिति की ओर जाते हैं, तो धीरे धीरे वो सारी पंखुड़ियां भी झड़ जाती है और व्यक्त भाव और भावना से भी ऊपर, और खाली बूर रह जाता, यानी उस कॉन्शियसनेस में हम रह जाते हैं कि मैं फरिश्ता हूं। इसी कॉन्शियसनेस में कोई से भी रिश्ता, डिवाइन रिश्ता भी निभाने के लिए, लेकिन उससे भी हम ऊपर हो गए, उससे भी उपराम हो गए। तो इसलिए कहा अव्यक्त और अलौकिक। जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर अंतर्मुखी या उस बाबा के प्यार में समा जाना सहज हो जाता है, या ये कहे कि लाइट माइट स्वरूप सहज बन जाते हैं। अब उसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या है? तो जैसे कहा कि फरिश्ता माना लाइट, लाइट रूप अर्थात हर बात में लाइटनेस आ जाए। सबसे पहले लाइटनेस आए मनसा में, आज की बाबा की मुरली सुनते हुए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही आज कि मनसा अगर लाइट है, या मनसा का प्रैक्टिकल जो मिरर है, दर्पण है, वो हमारी वाचा और कर्मणा है। तो इसीलिए मनसा में कोई भी प्रकार का व्यर्थ नहीं है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वाणी और कर्म में कोई भी प्रकार का व्यर्थ न हो, लेकिन वो वाणी में हमेशा शुद्ध भावना, शुभ भावना, शुभकामना के बोल समाये हुए हो। आज की वाणी सुनते हुए अंदर में महसूस हो रहा था कि स्पार्कलर्स को इस बात का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक प्रयोग बाबा ने बताया कि सचमुच हमारा व्यर्थ कितना है, क्या प्रयोग करेंगे? कौन सा प्रयोग बताया आज मुरली में? हाँ जी, क्वालिटी अच्छी होंगी। और प्रयोग कौन सा बताया बाबा ने? तो बाबा ने कहा टेप करो, टेप करो। हर एक के पास मोबाइल तो है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग बटन भी होता है। अगर हम अपने जेब में या अपने पास में उस रिकॉर्डिंग बटन ऑन करके सारे दिन की बातों को टेप करें, देखे, दिन के अंत में उसको सुने कि सचमुच आज मैंने समर्थ कितना बोला और व्यर्थ कितना हुआ। ये प्रयोग अब समय अनुसार बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम अपने आप को उस व्यर्थ से मुक्त कर सकते हैं, और मनसा के अंदर जितनी लाइटनेस आएगी, मनसा में लाइटनेस लाने के लिए व्यर्थ जीरो होना बहुत आवश्यक है। अगर व्यर्थ रहा तो मनसा हमारी लाइटनेस वाली स्थिति में नहीं होगी। किसी के प्रति भी कोई भी व्यर्थ भाव भी उत्पन्न न हो, तब कहेंगे कि हाँ, हमारी मनसा लाइट है। दूसरा जैसे कहा वाणी में लाइटनेस, अर्थात मेरे वचन से किसी आत्मा को भी दुख या फीलिंग का अनुभव नहीं होना चाहिए। मेरे कोई शब्द ऐसे न हो जो किसी को चुभ जाए और उसकी अवस्था को हलचल में ले आए, लेकिन मेरे शब्द किसी के अंदर उमंग उत्साह भरे, किसी के अंदर एक नई चेतना मोटिवेट कर दे, ऐसे मेरे वचन हो, तब कहेंगे कि हाँ वाणी में लाइटनेस है। कि कोई आत्मा खुशी में आ जाए, उमंग उत्साह में आ जाए और उनके अंदर एक ऐसी नई प्रेरणा का जोश या संचार होने लगे, ये वाणी की लाइटनेस है। तीसरा जो कहते कर्मणा में लाइटनेस, अर्थात हर क्षण ये अनुभव हो कि करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। जिस तरह से हमारी प्रकाशमणि दादी जी हमेशा उस निमित्त भाव से चलती रही, बाबा कराने वाला करा रहा है, ये प्रैक्टिकल में अनुभव किया और दूसरों को भी अनुभव कराया। हमेशा ये शब्द दादी के सुने। कई लोग जैसे दादी से जब मिलते थे और कहते थे, दादी आप ये संस्था की हेड है लेकिन आपको टेंशन नहीं होता है, तो दादी ने कहा, मैं कभी अपने आप को हेड समझती नहीं हूं, क्योंकि हेड समझेंगे तो हेडेक जरूर होगा। इसीलिए दादी हमेशा ये समझती थी कि मैं तो निमित्त हूं, बाबा करण करावनहार है, मेरी कर्म योग की स्टेज अनेकों को अनुभव हो, तब कहेंगे कि हां कर्मणा में लाइटनेस है। कर्म योगी बन करके कर्मेंद्रिय की अधीनता से परे, वही कर्मणा में लाइटनेस का अनुभव कराएगी। चौथा कहा संबंधों में लाइटनेस, संबंध संपर्क में लाइटनेस, अर्थात जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस और रूहानियत का अनुभव मुझसे हो, ये है संबंध संपर्क में लाइटनेस। और स्वभाव में लाइटनेस, अर्थात स्वभाव में जितनी सरलता और सहजता होगी उतना स्वभाव में लाइटनेस स्वतः आ जाएगा। तो ये हर लेवल पर लाइटनेस, ये है पुरुषार्थ, ताकि उस फाइनल स्टेज को हम सहजता से अनुभव करें। तो ये मुझे अपने आप में चेक करना है कि ये लाइटनेस हमने अपने आप में कितना लिया है। दूसरा जैसे कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव कभी धरती पर नहीं होते हैं, सदा उड़ते रहते हैं, जैसे एक हवा के झोंके के साथ चलते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए हर कोई जो साकार पालना लिए हुए हैं, वो अनुभव यही सुनाते कि बाबा जब आंगन से गुजरता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे कोई बादल पास हो गया, इतनी लाइटनेस बाबा से फील होती थी, जिसके पैर धरती पर नहीं। मम्मा की बात जब सुनाते हैं पुराने भाई बहने, तो यही कहते हैं कि मम्मा जब चलती थी तो जैसे धरती को भी कष्ट नहीं होना चाहिए उस तरह से चलती थी। कई बार जैसे कई लोगों को चलने में भी वो फरिश्तापन वाली नहीं स्थिति है। तो इसीलिए बाबा कहे कि लाइटनेस के साथ साथ धरती पर पैर नहीं है, उड़ते हुए जैसे हवा के झोंके के तरह चल रहे हैं, पास हो गए। भावार्थ यही कि देह अभिमान रूपी धरनी से परे है। और उसके लिए दादी जानकी हमेशा ये बात कहती थी कि उसके लिए जैसे उड़ने के लिए, कोई फ्लाइट को भी उड़ने के लिए रिफाइन पेट्रोल चाहिए, तभी वो फास्ट गति से उड़ सकता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर ये फास्ट गति को ले आने के लिए मन, बुद्धि और दिल क्लीन, क्लियर एंड प्योर, जितना ये तीन चीजें होगी अपने अंदर, क्लीन स्वच्छता, अर्थात मन हमारा स्वच्छ होगा, बुद्धि हमारी स्पष्ट क्लियर और दिल हमारा प्योर साफ। तो स्वच्छ, स्पष्ट और साफ दिल, जितना अपने अंदर ये शुद्ध रिफाइन पेट्रोल का कार्य करता है जो हमें एक नेचुरल उड़ती कला में ले जाता है, तब कहेंगे कि हां इस धरनी पर उसके पैर नहीं है। हर प्रकार के आकर्षण से सहजता से परे, जितना इन सभी आकर्षणों से अपने आप को परे ले जाते हैं, चाहे देह की इंद्रियों के आकर्षण से परे, इस भौतिक दुनिया के आकर्षणों से परे, उतना ही उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना सहज होगा। और तीसरी बात, जैसे कहा कि ये शुद्ध पेट्रोल अगर है मन बुद्धि के अंदर, मन बुद्धि और दिल में, तो नेचुरल है कि यही अंतर्वाहन का कार्य करेगा। कई बाबा की मुरलियां चली है कि अंतवाहक शरीर से उड़ करके आ जाओ। भावार्थ यही कि अंतर्वाहन हमारा मन बुद्धि है, ये अंतर्वाहन का कार्य करता है जो संकल्पों की शुद्धि है। ये संकल्पों की शुद्धि हमें जैसे अंतर्वाहन हमारे लिए बन जाता, और संकल्पों की गति से जैसे उड़ते हुए हम अपने अव्यक्त वतन पहुंच जाए, क्योंकि वहीं तो अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात होगी और वहां पर हर एक का एक फरिश्ता ड्रेस है, चमकीला फरिश्ता ड्रेस है। एक बार दादी गुलजार के साथ ऐसे ही चिटचैट हो रही थी तो दादी ने उस दिन संदेश सुनाया था कि आज बाबा ने सारी सभा को वतन में इमर्ज किया था। तो मैंने दादी से पूछा, दादी आपने हमको देखा था ऊपर सभा को इमर्ज किया तो हम दिखाई देते हैं ऊपर? तो दादी ने कहा कि ऐसे पहचान नहीं सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं पहचानते? तब दादी ने ये बात स्पष्ट किया था कि जिस तरह ब्रह्मा बाबा का नीचे का पुरुषार्थी स्वरूप और ऊपर संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जब देखते थे, और उस समय ये रहस्य स्पष्ट हुआ था कि नीचे पुरुषार्थी स्वरूप, ऊपर संपूर्ण स्वरूप, और तब ब्रह्मा बाबा को भी मालूम पड़ा कि ये पुरुषार्थी स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज हो जाना है। ठीक इसी तरह दादी ने कहा, हम सभी का भी, क्योंकि संगम युग पर ही अव्यक्त वतन की, सूक्ष्म वतन की रचना होती है, और वो इसीलिए होती है कि हम सभी ब्राह्मणों का भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर में है। और इसीलिए जब बाबा सभा दिखाता है तो हर एक का वो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते फीचर्स में दिखाता है, तो वो फीचर्स बहुत दिव्य होते हैं, बहुत लाइट वाले होते हैं, इसलिए पहचान नहीं सकते। कोई कोई पहचान लेते हैं, किसी किसी को, जैसे दादियों को पहचान लेते हैं क्योंकि काफी नजदीक है, लेकिन बाकी सभा में कौन कौन है उसको ना हम ध्यान से देखते हैं और न पहचान सकते हैं, क्योंकि वो लाइट ऐसी इमर्ज होती है उस स्वरूप से, तो इसीलिए पहचान नहीं सकते हैं। तो तब ये बात स्पष्ट हुई कि हम सभी का भी, जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप था, वैसे हम सभी का भी संपूर्ण स्वरूप ऊपर में है। और इसीलिए भी ये लक्ष्य मिल गया कि ये पुरुषार्थी स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज होना है। इसीलिए जब बाबा के पास हम जाते हैं अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त मिलन मनाने के लिए, तो उस समय ये स्थूल रेस को तो यहां ही छोड़ देते हैं। अंतवाहक शरीर से हम जाते हैं, अर्थात जो सूक्ष्म स्वरूप यहां का होता है, जैसे दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसका सूक्ष्म बॉडी यहां से अलग होता है, तो वो सूक्ष्म बॉडी हर एक का है, तो वो सूक्ष्म बॉडी से हम जाते हैं वतन, जो अंतर्वाहन है हमारा। लेकिन वहां जाने के बाद वहां हमारा वो चमकीला फरिश्ता ड्रेस जो है उसको हम धारण करते हैं, और जब वो ड्रेस धारण करते हैं तब हम जाकर के अव्यक्त बाबा से मिलन मना सकते हैं, उसके सिवाय मिलन नहीं हो सकता है। इसीलिए कई बार कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि बहुत देर तक हम उस स्थिति में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस बहुत देर तक हम धारण करके नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जो नीचे के लाइटनेस का पुरुषार्थ होना चाहिए वो इतना तीव्र नहीं है। जो कहा कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वभाव, उसमें जो लाइटनेस नहीं है, इसलिए ज्यादा देर तक हम उस फरिश्ता ड्रेस को पहन के नहीं रख सकते, और ये ड्रेस बार बार हमें खींच लेता है, क्योंकि ये हैवीनेस है तो वो हैवीनेस हमें वापस खींच लेता है। लेकिन जब हम उसमें होते हैं, उस ड्रेस में अगर लाइटनेस का पुरुषार्थ किया गया, जैसे कई बार स्वमान देते हैं, भट्ठी में स्वमान देते हैं, और उस सुबह से ही अमृत वेले से उस स्वमान का अभ्यास करते हैं, तो उस दिन जब हम योग में बैठते हैं तो सहजता से, और उसमें भी विशेषकर शाम के योग में फ्रेश होकर के, जब दोपहर को रेस्ट करके शाम को हम योग में बैठते हैं, सारे दिन का जो प्रभाव है वो लाइटनेस का, व्यर्थ का खाता कोई नहीं रहा, तो जब हम बैठते हैं कि सहज ही उस अंतर्वाहन द्वारा हम ऊपर पहुंच करके, सूक्ष्म स्वरूप द्वारा ऊपर पहुंच करके वहां अपना वो चमकीला ड्रेस धारण करके फिर बाबा से मिलन मनाना, और वो शाम का योग इतना सुंदर होता है, क्योंकि हम पूरा एक घंटे तक तो समय पता नहीं चलता है कि इतना जल्दी योग समाप्त तो हो गया, ये फील होता है। उसका कारण यही है क्योंकि हम बहुत देर तक उस ड्रेस को धारण किए हुए स्थिति में रहे, और उस समय जब बाबा से नैन मुलाकात करते हैं, बाबा से जैसे अपने ऊपर वरदानों का हाथ महसूस करते हैं, बाबा के वरदानों को जैसे अनुभव करते हैं, और साथ साथ जैसे महसूस होता है कि बाबा के संग संग हम चल रहे हैं, और जहां बाबा ले जाता है, कभी कौन सा दृश्य अनुभव कराता है, कभी कौन सा दृश्य अनुभव कराता है, जैसे दादियां मैसेज लाते थे जब, गुलजार दादी, तो कई बार बाबा जैसे कोई बहुत बड़े हॉल में ले जाता था और जहां हर एक का आसन होता था उस आसन पर हर कोई बैठा होता है, जैसे कमल आसन के रूप में कभी देखा, कभी किस आसन में देखा, और उस कमल आसन में से जैसे सातों रंग की लाइट निकलती है और जैसे पूरा सूक्ष्म वतन को एकदम रंग बिरंगी लाइटों से जैसे सजा देते थे। तो ठीक इसी तरह हमें भी उस विजुअलाइजेशन को जैसे विजुअलाइज करते हुए उसको अनुभव में जाना है, उसके अनुभव में जाना है, इमेजिन नहीं करना है, लेकिन वो विजुअलाइजेशन में खुद को जैसे अपने आप को देखना है, तब उसका अनुभव कर सकेंगे। इमेजिनेशन में हम खुद को नहीं देखते हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन में हम खुद को उस स्वरूप में देखते हुए अनुभव करते हैं। और उस समय जैसे बाबा से पावरफुल सकाश ले रहे हैं, बाबा के वरदानी हाथ को अपने ऊपर अनुभव करते हैं, या बाबा के संग संग कभी बगीचे में जैसे बाबा ले जाता है, कभी बाबा तीन लोक की सैर कराने के लिए ले जाता है, कभी बाबा भक्तों के पास ले जाता है, तो नमः शाम के समय में जब इस तरीके से हम अनुभव करें कि बाबा के संग संग जैसे चलते हुए बाबा की सकाश को अनुभव करते हुए फिर जैसे दुनिया के ग्लोब के ऊपर हम देते हैं, तब काफी देर तक हम उस स्थिति में अपने आप को देख भी सकते हैं, रह भी सकते हैं और उसके अनुभव में अपने आप को समा सकते हैं। तो इसीलिए अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप यानी इस ड्रेस को धारण करना या ये स्वरूप उसमें समा जाना, उसमें मर्ज हो जाना, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज नहीं होता है तब तक वो फरिश्ता स्टेज का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए जैसे कहा दिन भर में या जैसे लगातार एक दो दिन से उसी लाइटनेस की स्थिति का अनुभव करो, तो जब बैठेंगे तो सहजता से उड़ जाएंगे और उसका अनुभव हम कर सकते हैं। तो इसलिए अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जो डबल लाइट स्थिति है, डबल लाइट में एक तो जैसे लाइट का ऑरा अपना तभी विकसित होता है, यहां पर भी जब हम कर्मयोगी स्टेज में है तभी भी हम अपने आप को लाइट महसूस करें, हल्कापन में महसूस करें, और जैसे कि वो डबल लाइट का ऑरा, वो प्रकाश का प्रभा मंडल अपने चारों ओर महसूस करें, क्योंकि जितना हम उस प्रकाश के प्रभा मंडल में अपने आप को देखेंगे उतना कोई भी प्रकार के माया का स्वरूप कहो या व्यर्थ का रूप कहो, वो हमारे उस प्रभा मंडल को छेद करके हमारे तक पहुंचे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा एक कवच बन जाता है, कवच का कार्य करता है जिसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी या व्यर्थ की एनर्जी हम तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है तो दिन भर में ये लाइटनेस, ये प्रभा मंडल अपना विकसित करना बहुत जरूरी है। और अमृत वेले से लेकर के अगर ये प्रभा मंडल में अपने आप को देखेंगे तो फिर जब बैठेंगे तो बहुत सहज वो अंतर वाहन से ऊपर जाकर के उस फरिश्ता ड्रेस में समा करके बाबा के सामने, और वहां पर भी वो लाइट का प्रभा मंडल में अपने आप को देखेंगे। परसों की बाबा की साकार मुरली में बहुत अच्छी एक बात आई थी कि बाबा ने कहा कि जब आप पुरुषार्थी स्वरूप में हैं और आप अपना फोटो निकालो और उसमें अगर कोई लाइट का प्रभा मंडल देता है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये शरीर पतित है। इसीलिए प्रभा मंडल उनको दिखाया जाता है जिसका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होता है। लेकिन जब हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वहां पर जो अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस हम धारण करते हैं वो ड्रेस भी पावन है। इसलिए वहां अपने आप को उस प्रभा मंडल में देखना सहज भी है और संभव भी है। और जब उस ड्रेस में अपने आप को देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे उस संपूर्णता की जो स्टेज है जिसमें कोई भी इधर उधर के संकल्प न चले, इतनी एकाग्रता और बाबा के संग हर एक संबंध का क्लोजनेस का अनुभव हम करें, संबंध के समीपता का अनुभव करें। हाँ, वो लाइट का ही ड्रेस है ना, प्रकाश का ड्रेस है। नहीं, अपने में ही चले जाएंगे आप दूसरे किसी में जा नहीं सकते हैं, दूसरे की ड्रेस में आप जा नहीं सकते हैं, आप अपनी ड्रेस में ही चले जाएंगे। इतना स्वाभाविक है, वही आपको पुल करेगा, वो मैग्नेट की तरह है जो पुल करेगा और आप उसी में समा जाएंगे। बाकी किसी और की ड्रेस आपको फिट भी नहीं होंगी, है ना। तो इसीलिए आपको ये टेंशन रखने की भी जरूरत नहीं कि किसी और की हम ड्रेस में चले जाएंगे, नहीं, आप अपनी ड्रेस में ही जाएंगे। हाँ, नहीं, इस बॉडी का कॉन्शियसनेस वहां नहीं रहता, इसी तो लिए तो लाइट कहा कि एकदम वो गुलाब की पत्ती क्यों कहा, झड़ गई सारी पत्तियां और खाली बूर रह गए, यानी वो आत्मा सोल कॉन्शियसनेस कहो या आत्माभिमानी स्थिति में जैसे हम उड़ करके जाते हैं, तो कोई भी प्रकार का इस शरीर का भान नहीं रहता है वहां पर, तब जाकर के आप उसमें मर्ज हो सकते हैं, ये स्वरूप उसमें मर्ज। और यही हमारा पुरुषार्थ है, इसलिए बाबा कई बार कहते अपने वो संपूर्ण स्वरूप को भी सामने देखते रहो कि ये मेरा स्वरूप है और ये पुरुषार्थी स्वरूप को उसमें जाके मर्ज होना है। जिस तरह ब्रह्मा बाबा अनुभव करते थे या पुरुषार्थ करते थे कि ये मेरा पुरुषार्थी स्वरूप को जाकर के उसमें मर्ज होना है, और उसके लिए बाबा ने ये अभ्यास किया लाइटनेस का, कि यहां ही बाबा ने संकल्पों में व्यर्थ को जीरो किया, वाणी में भी किसी से भी बात करते थे, कई भाई बहने अनुभव सुनाते, बाबा के पास जाते थे, ये समाचार सुनाएंगे और वहां जाके सब भूल जाते थे। तो ये फीलिंग दूसरे को भी आए, इतनी लाइटनेस हमारे अंदर हो, व्यर्थ इतना जीरो होगा तब तो कोई बात करने आएगा व्यर्थ और भूल जाएगा, क्या पूछना था, क्या कहना था, कहेंगे भूल गए। तो ये प्रमाण है कि हाँ, मैं उस लाइटनेस की ओर जा रहा हूं। साथ ही साथ जैसे आज बाबा ने कहा कि शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, बाबा की एक मुरली याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था अव्यक्त मुरली में कि बाबा के सामने हर प्रकार के बच्चे आते हैं, चाहे अव्यक्त बाबा के साथ में जब मिलन मनाते थे, इतने सीजन बाबा ने मिलन मनाया, तो उस समय हर प्रकार के बच्चे बाबा के सामने आते थे, संपूर्ण तो कोई नहीं था, लेकिन बाबा के सामने कैसे कैसे बच्चे आते थे, उसके बाद भी बाबा उन बच्चों की विशेषता को ही देखता था। बाबा के कभी भी दृष्टि उनकी कमजोरी पर नहीं पड़ती थी, ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा ही करता है, इसको क्या दृष्टि देने का, इसको क्या वरदान देने का, नहीं। इस तरह से कोई आत्मा को हम जानते हैं कि ये आत्मा के अंदर इतनी कमी कमजोरी है, ये आत्मा ऐसा है, जो अंदर से कभी कभी आता है कि भगवान ने ऐसा आत्मा को भी चुना, क्यों चुना, है ना, हम लोगों को संकल्प आ जाता है, लेकिन उस समय अपने आप को देखो, क्या उस आत्मा के प्रति भी मेरी शुभ भावना शुभ कामना है। अगर है तो माना मेरी भावनाओं में वो लाइटनेस आ गई है, उसकी कमजोरी को जानते हुए भी नहीं देखना है मुझे, और उसके प्रति निर्मल प्रेम के वाइब्रेशंस फैलाना है, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस को प्रवाहित होने देना है, तब कहेंगे कि हाँ, मेरी भावनाओं में वो लाइटनेस आई है, मेरे संकल्पों में वो लाइटनेस आई है ना। आज भी बाबा ने मुरली में यही कहा कि दर्पण है वाणी और कर्मणा, लेकिन मनसा के अंदर हमारे अंदर कितनी शुभ भावना शुभकामना है उस आत्मा के प्रति, तब लोग भी कहेंगे कि ये तो फरिश्ते के बोल है, ये तो जैसे फरिश्ता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि ये तो जैसे फरिश्ता है, ये फरिश्ते के बोल है। हर कोई ये महसूस करे जब हम बोले कि आपके आशीर्वचन जैसे मेरे लिए निकले और मुझे अब विश्वास हो गया कि ये मेरा काम जरूर पूरा होगा, आपका आशीर्वाद मिल गया। तो इस प्रकार से जैसे गुलजार दादी के सामने जाते थे और दादी कुछ भी बोलती थी तो लोग महसूस कर, ये जैसे दादी का आशीर्वाद मिल गया मुझे और अब तो मैं सफलता मूर्त हो ही जाऊंगा। तो इस तरह से फील हो कि हाँ, हमारे बोल भी किसी के लिए आशीर्वाद का काम करे, लेकिन वो तब होगा जब व्यर्थ जीरो हो जाएगा। अगर व्यर्थ है वाणी में कर्म में तो फिर हमारी शुभ भावना शुभ कामना नहीं है और वो लाइटनेस का अनुभव नहीं कराएगा, वो थकावट का अनुभव कराएगा। अगर थकावट महसूस हो रही है दिन के अंत में भी, थक गए आज बहुत थक गए, ये थकावट का अनुभव करना माना भारीपन है, वो लाइटनेस नहीं है, क्योंकि लाइटनेस में कभी थकावट नहीं होती है। और यही तो बाबा की आश है हम बच्चों के प्रति कि हर बच्चा, बाबा कहीं आज की मुरली में कहा बाबा की एक ही तो आश है, एक ही आश है, कौन सी? हर बच्चा बाप समान बन जाए, यही बाबा की एक आश है। तो क्या उस आश को मैं पूरा करूं? भगवान की अगर मेरे लिए एक ही आश है और कोई अपेक्षा नहीं मुझसे और कोई आशा नहीं मुझसे, बस एक ही आशा है कि मेरा हर बच्चा मेरे समान बन जाए। तो जब हम कम से कम अपनी वाणी के ऊपर इतना कंट्रोल ले आए, इतना अपने आप में पुरुषार्थ करते हुए उस व्यर्थ को जीरो लेवल तक ले आए, तभी तो हम बाप समान बनेंगे। तो कोई आत्मा कैसी भी है, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी आखिर भगवान ने इसको भी सिलेक्ट किया है, कुछ तो देख करके सिलेक्ट किया है। तो मुझे उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना को ही प्रवाहित करना है। ये कैसा भी है, लेकिन है तो बाबा का बच्चा है, तो अपना परिवार का, ये लाइटनेस को ले आएगा। और जितनी ये लाइटनेस को अनुभव करेंगे जीवन के अंदर, उतना ही हम बहुत सहजता से उस अव्यक्त संपूर्ण ड्रेस को धारण करके उसमें चल सकेंगे, रह सकेंगे यहां पर। और तब बाबा, क्योंकि बाबा को जो लास्ट में अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराना है, तो ये ड्रेस से नहीं कराना है। बाबा जो साक्षात्कार कराएंगे उस अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस से साक्षात्कार, तो जितना मैं उसमें रहूंगी तब बाबा मुझे यूज करेगा और परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए हम निमित्त बनेंगे। कि कई आत्माएं ऐसे देखेंगी कि जैसे कोई एंजल आया, मुझे मदद किया, मुझे अंदर में इतनी राहत दिया, क्योंकि अंतिम समय तो यही अनुभव कराना है। अंजलि जो देने की बात है, वो अंजलि कैसे दे सकेंगे? तो फरिश्ता स्टेज द्वारा ही अंजलि देते हुए आगे बढ़ेंगे कि वो आत्माएं महसूस करेंगे जैसे कोई एंजल आकर के मुझे राहत देकर के अंदर में शक्ति भर करके जैसे चला गया। तो ये फील होना, तो बाबा मुझे तब यूज करेगा जब मैंने उसका अभ्यास किया हुआ है। और जो बाबा के इस प्रत्यक्षता के सेवा में अपने आप को लगाता है या निमित्त बनता है, तो निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है, उसका रिटर्न भगवान बहुत बड़े रूप में देता है। इसीलिए बाबा कहे कि अपने आप को देखो कि हम अपने आप को उस स्टेज तक लाए कि बाबा मुझे यूज करे। यह है अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में साक्षात्कार कराने के लिए अपने आप को तैयार कर देना। तो ये तैयारी अभी हमारी कितनी है, क्योंकि समय तीव्र गति से अगर आगे बढ़ रहा है तो अब मेरे पुरुषार्थ में भी ऐसी स्टेज आ जाए जो हम एंजल्स बन करके अनेक आत्माओं को अनुभव कराएं, परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बने, उनको साक्षात्कार कराएं। तो कराने वाला तो बाबा है, लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट तैयार हूं जो बाबा मुझे यूज करे, ऑफर करना है अपने आप को। तो इसीलिए बाबा ने आज जो मुरली चलाई, व्यर्थ को करो जीरो, तभी हम कर सकेंगे। हर आत्मा के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति पहले देखो, मेरी शुभ भावना शुभ कामना निरंतर प्रवाहित हो रही है, वो विशुद्ध प्यार प्रवाहित हो रहा है हर आत्मा के प्रति, जानते हुए उसकी क्या वीकनेस है, क्या कमजोरी है, किस तरह की आत्मा, ये सब जानते हुए भी प्रवाहित हो रही है। तो इसीलिए बाबा ने जब हर एक आत्मा को चुना है तो मैं कोई रिजेक्ट कर नहीं सकती हूं, ना मेरे पास ये अधिकार है कि किसी को हम रिजेक्ट करें। लेकिन हर समय हम भी अपने आप को उसी विधि से चेक कर सकते हैं कि हाँ, हम कहां तक तैयार हैं जो बाबा मुझे यूज करे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।